أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آيات نمبر 121 کل جہاں پہ سبق ختم ہوا تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ سے شروع ہو کر اور پھر کفار کے ساتھ اپنے اندرونی راز نہیں شیئر کرنے اور ان کو اپنا قریبی دوست نہیں بنانا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے ذکر آ رہا ہے جنگ بدر کا جنگ بدر 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ہوئی تھی اور یہ اسلام کا ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی دعوت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایز اے لیڈر اور ایز اے سپہ سالار کہ 313 یا 315 صحابہ کی جماعت نے 1000 قریش کے سرداروں پر مبنی اور مشہور جنگجوؤں پر مبنی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان کو شکست فاش دی تھی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کا ریفرنس دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے آپ صبح سویرے من اہلی کا اپنے گھر والوں سے یعنی کہ جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے تبوی المؤمنین آپ بٹھانے لگے مومنوں کو مقاعدہ ان کے ٹھکانوں پر ان کے مورچوں پر للقتال جنگ کے لیے اچھا یہ جنگ احد کا ریفرنس ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ ابھی آگے دیکھیں گے جو بیان آ رہا ہے واللہ اور اللہ سمیع علیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس ہمت جب ارادہ کیا طائفتان نے دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ ہمت ہار دیں تو یہ طائفتان منکم جو ہیں یہ منافقوں کا ذکر نہیں ہے یہ مسلمانوں میں ہی ایسی جماعتیں تھیں جو اس وقت گھبرا گئیں جنگ سے اور اس وقت وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے واللہ ولیہما اور اللہ ان کا مددگار تھا یعنی کہ یہ منافق نہیں ہے یہ کافر نہیں ہے یہ دو گروہوں نے ایسا ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ نہ کریں وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن ولقد نصرکم اللہ اور البتہ تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ ببدرن بدر کے میدان میں وانتم اذلۃن جبکہ تم کمزور تھے فتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو اس تقولو جب آپ کہنے لگے للمؤمنین مومنوں کو اللہ یکفیکم کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے این یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بسلاستی 3000 من الملائکت فرشتوں میں سے منزلین اتارے ہوئے بلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کرو وتتقو اور تقوی اختیار کرو ویأتوکم اور وہ آئیں تم پر من فورہم اچانک سے ہذا یمددکم یہ ہے یہ سچ ہے یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسط آلافن 5000 من الملائکت فرشتوں میں سے مصومین نشان زدہ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا ہے اس کو اللہ نے الا بشرا لکم مگر ایک خوشخبری تمہارے لیے ولتطمئن قلوبکم بہ اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے ومن نصر اور نہیں ہے کوئی مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم جو غالب ہے اور حکمت والا ہے لیقطع تاکہ وہ کاٹ ڈالے طرفم من الذین ایک گروہ ان لوگوں میں سے کفرو جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا وہ انہیں ذلیل کر دے فینقلبو پس وہ لوٹیں خائبین نامراد آیت نمبر 127 یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں میں ہمیشہ کنفیوز ہوتی ہوں سوری یہ بیان جنگ بدر کا ہے اور جو 2 ہجری میں ہوئی ہے اور اس میں فرشتوں کے ساتھ نصرت کرنے کی روایات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم فرشتوں کی وجہ سے جیت گئے ہو मदद और नुसरत तो सारी अल्लाह के हाथ में है, ये तो तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए उसने कहा है कि मैं इतने फरिश्ते भेज रहा हूँ। लैस लका मिनल अम्रे, नहीं है आपके लिए इस काम में कुछ भी, यानी आपका दखल इस काम में कुछ भी नहीं है। औ यतूब अलैहिम, खा वो तौबा कबूल करें उनकी, और युअज़्ज़िबुहुम, या उन्हें अजाब दे, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, क्योंकि वो ज़ालिम हैं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में। यग़फिरु लिमन यशाउ, वो बख्श दे जिसको वो चाहता है। वयुअज़्ज़िबु, और अजाब दे, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, नहीं खाना है तुमने सूद, अदआफ़म मुदाअफ़ा, दुगना और चौगना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। सूद की डेफिनेशन और इसकी जो बुराइयां हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ सूरह अल-बकरा में, जहाँ पे सूद की हुरमत का बयान हुआ था, वही हुक्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वत्तकुन्नार, और डरो आग से, अल्लती, वो जो, उद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए। वतीउल्लाह वर्रसूल, और अतात करो अल्लाह की और रसूल की, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुरहमून, तुम पर रहम किया जाए। वसारिऊ, और दौड़ो, सुरत करो, इला मग़फ़िरतिन, बख्शिश की तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। व जन्नतिन, और वो जन्नत, अर्दुहस समावात वल अर्द, जिसका अर्ज, जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितना है उसके बराबर है। ये एक मुबालगे का सीगा है कि जितना बड़ा आसमान तुम्हें नज़र आ रहा है और ये इतनी बड़ी ज़मीन, समझो जन्नत इतनी है। उद्दत लिल मुत्तकीन, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। अल्लज़ीना, अब मुत्तकीन की एक क्वालिटी बताई जा रही है। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, फिस्सर्राए, खुशी में, वज़्वर्राए, और तकलीफ़ में। वलकाज़िमीन अलग़ैज़, और पी जाते हैं, कज़मा, काफ़, ज़वे, मीम, काज़िम, घूंटने वाला, पीने वाला, तो वो पी जाते हैं अलग़ैज़ा, गुस्से को। ये कज़म का लफ्ज़ जो है, इसे बहुत ज़्यादा गौर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई थी कि जब तुझे गुस्सा आए तो ये पढ़ लिया कर। तो काज़िमीन अलग़ैज़ कौन से लोग हैं? देखें, कज़मा जो है, ये ज़मीन के नीचे पानी जब अपने लिए सुरंग करके एक कारेज़ जैसा बना लेता है और वो जाके किसी जगह को सैराब कर देता है, तो उस मैकेनिज़्म को भी यही लफ्ज़ कज़मा कहा जाता है। घूंटने का मतलब ये है कि ऊपर सरफेस पे कुछ नहीं नज़र आता और नीचे 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 वो गुस्सा जो है वो बह के एक प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि ये कहना कि गुस्सा हराम है, ये गलत है, क्योंकि गुस्सा एक इमोशन है जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की तख्लीक है, और इसका कोई मकसद है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हर चीज़ की तारीफ होती है, उसकी इल्लत होती है, रीजनिंग होती है, और फिर उसका समरा होता है। तो गुस्से का समरा क्या है? गुस्से का समरा एक मुजाहिद की गैरत है और उसका वो जज्बा है जिसमें वो अल्लाह की मुखालफत करने वाले और हक़ की मुखालफत करने वाले को ख़त्म करता है, उसे कत्ल करता है। उसके लिए भी गुस्से की ज़रूरत होती है, कोई प्यार से या मोहब्बत से ये काम नहीं कर रहा होता। तो गुस्से को सही डायरेक्शन में चैनल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए किसी के ऊपर गज़ब करना जो है वो हराम है, इस चीज़ को हराम कहा गया है। गुस्सा आना जो है वो एक फितरी अमर है, वो शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गुस्से का एक्सप्रेशन जो है उसे कंट्रोल करना है। इसीलिए काज़िमीन अलग़ैज़ के पी जाते हैं, घूंट जाते हैं अपने गुस्से को। वलआफ़ीना अनिन्नास, और माफ़ करते हैं लोगों को। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तो दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। और ये एहसान करने वाले कौन हैं? बड़ी खूबसूरत आयत है ये कि जो लोग खुशी में और तकलीफ़ में खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, उनकी तंगदस्ती जो है वो उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से नहीं रोकती। थोड़ा होता है तो थोड़ा देते हैं, बहुत होता है तो बहुत देते हैं, और गुस्से को घूंट जाते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह ही के क्रिएट किए हुए एक जज्बे को कंट्रोल करते हैं। वलआफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ़ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तो दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। ये लोग कौन है? ये मुहसिनीन, वल्लज़ीना, और जो लोग इजाफा आलू फाहिशतन, जब उनसे कोई फहश हरकत सरजद हो जाती है। अब ये एहसान का यानी कि एक ऐसा एक पर्सनल गुनाह का जिक्र किया गया जब वो कोई फहश कर बैठते हैं, औज़वलमू अनफुसहुम, या वो अपने ऊपर कोई जुल्म कर बैठते हैं, ज़िक्रुल्लाह, वो अल्लाह को याद करें, फस्तगफरू, फिर वो बख्शिश मांगें, लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए, वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूबा, और कौन बख्शता है गुनाहों को, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। और सबसे बड़ी बात मोहसिनीन की जो पहचान है, वलम युसफिरू, और वो नहीं अड़ते हैं, अला मा फ़अलू, जो उन्होंने किया। तो गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान एक ख़ता का पुतला है, वो ख़ता का इर्तिकाब करता है, लेकिन जो लोग गुनाह करके अपनी गलती फौरन मान लेते हैं, जैसे हज़रत आदम ने कहा, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, तो वो फिर वो क्या है कि वो उनको अल्लाह बख्शता है। जब वो अपना अपनी गलती मानेंगे ही नहीं, जब वो अपना गुनाह मानेंगे ही नहीं, तो फिर वो तौबा कैसे करेंगे, और जब तौबा नहीं करेंगे तो बख्शे कैसे जाएंगे। तो दरअसल तौबा का मकसद भी यही है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, तो और वो अपने काम, अपनी गलती पर, अपने गुनाह पर इसरार ना करे। वलम युसिरु अला मा फअलू, और वो नहीं अड़े उस पर जो वो कर गुजरे हों, वहुम यालमून, और वो तो जानते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, जज़ाउहुम मग़फ़िरतुन, इनकी जज़ा बख्शिश है, मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, व जन्नातुन, और वो बाग हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, व निअमा, और क्या अच्छा है अजर, बदला, अल आमिलीन, अमल करने वालों का। कद खलत, तहकीक गुजर चुकी है, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, सुननुन, सुन्नतें, तुमसे पहले वाकयात गुजर चुके हैं, फसीरू फिल अर्द, पस सैर करो, चलो फिरो जमीन में, फंजुरू, पस देखो, कैफ़ काना, कैसा हुआ, आकिबतुन, अंजाम, अलमुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों का। हाज़ा बयानुन लिन्नासी, ये बयान है लोगों के लिए, व हुदन, और हिदायत है, व मौइज़तन, और नसीहत है, आम लोगों के लिए ये एक बयान है, हम एक बयान बोल रहे हैं, हुदन, और अगर वो चाहें तो वो इससे हिदायत ले लें, व मौइज़तन, और ये नसीहत है। नसीहत का मतलब है वो चीज़ जो मोहब्बत से किसी की रहनुमाई की जाए और सुनने वाला भी उसको कबूल करे और उस पर अमल करे। मौइज़तन, वाज जो है वो इससे निकला है, मौइज़तुन, और ये एक नसीहत है, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। वला तहिनु, और तुम सुस्त ना पड़ो, वला तहज़नु, और ना ही गम खाओ, व अंतुमुल आलाउना, और तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। 140 आयत अब यहाँ से शुरू हो रही है, और ये जंग उहद के तनाजुर में है। जंग उहद वो जंग है जिसमें आज मैं आपको तस्वीरें भेजूंगी उसकी, मैदान की और उस घाटी की, जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, और खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और ये उनकी जंगी चाल थी जिसकी वजह से मुसलमान जीत रहे थे। लेकिन जब उन्होंने रसूल की नाफरमानी की और वो उस घाटी से उतर के भागे माले गनीमत के पीछे, तो पीछे से कुफार के एक लश्कर ने उन्हें जकड़ लिया बीच में, और वो कुफार के दो लश्करों के बीच में फंस गए, और उसके बाद 70 मोमिन शहीद हुए थे, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर फहरिस्त हैं, और भी बहुत ही यानी कि करीबी सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जंग में शहीद हुए थे, और बहुत एक गम का समा था। तो वो उसके बैकग्राउंड में ये आगे बयान हो रहा है, इन यम ससकुम, अगर तुम्हें पहुँचा है करहुन, एक ज़ख़म, फ़कद मसल कौमा, बस तहकीक पहुंचा है उस कौम को, करहुम मिसलहु, ऐसा ही ज़ख़म, इसी जैसा एक ज़ख़म, व तिलकल अयामु, और ये तो दिन है, नुदा विलोहा नो हम, और फिर आगे जो लफ्ज़ है दाल अलिफ लाम या दाल वाव लाम, यानी कि अदलना बदलना, ये बदला करना है, नुदा विलोहा, हम बदलते हैं इन दिनों को, बारी बारी अदलते बदलते हैं, बैन अन्नास, लोगों के दरमियान, वलियालमल्लाहुल्लज़ीना, और ताकि मालूम कर ले अल्लाह उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वयत्तखिज़ा और बना ले मिन कुम तुम में से शुहदा आ शहीद गवाह बना ले या वो जिनको किताल में दर्जा शहादत देना है। वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन दोस्त नहीं रखता जालिमों को। तो जंग उहद में एक बात याद रखें कि मुसलमान चूंकि बदर जीत चुके थे तो अल्लाह ताला एक लतीफ़ तरीके से इनको ये भी याद दिलाता है कि तुम जब फतह तुम्हें हासिल हो गई और जब तुम्हें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई तो तुमने रसूल के हुक्म की नाफरमानी की और फिर उसके बदले में अल्लाह ताला ने जो सबक मुसलमानों को सिखाया है उस वो हमें याद रखना चाहिए कि रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी ने कितना बड़ा नुकसान दिया था उस वक्त उम्मत को। वलियुमाखिसल्लाहु और ताकि पाक साफ कर दे अल्लाह अल्लज़ीन आमनू जो लोग ईमान लाए वयमहक़ल काफिरीन और मिटा दे कुफ्फार को। अम हसिब तुम क्या तुम ये समझते हो अंतदखुलुल जन्ना ये कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा और अभी नहीं यालमिल्लाहु अल्लाह ने मालूम किया है अल्लज़ीना उन लोगों को जाहदू मिनकुम जो जहाद करने वाले हैं तुम में से वयालमस्वाबिरीन और अभी नहीं मालूम किया सबर करने वालों को। वलकद कुंतुम और तहकीक तुम थे तमन्नौनल मौता तुम तो मौत की तमन्ना करते थे मिन कबले इससे पहले अंतलकौहु ये कि तुम उससे मिलो। फ़कद रअयतुमू हो तो तहकीक अब तुमने उसे देख लिया व अंतुम तंजुरून और तुम उसे अपनी आंखों से देखते हो। ये भी जंग उहद ही के तनाजुर में ये आयात आई हैं। और अब जो आगे आयत आ रही है आले इमरान 144 ये इंतहाई तारीखी हैसियत है इस आयत की। ये वो आयत है जिसकी तिलावत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर की थी। ये क्योंकि जंग उहद में एक वक्त ऐसा आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह उड़ गई क्योंकि वहाँ पर मैदान में जब बहुत बुरा हाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पीछे एक पहाड़ी पर चढ़ के एक गार में छुप गए और सहाबा ने वहाँ से बाहर खड़े होकर आपकी हिफाजत की। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में चले गए तो नीचे कुफार ने अफवाह उड़ा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं और मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पे हौसले हार दिए तलवारें फेंक दीं और धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। और उस मौके पे भी कितने मुसलमान शहीद हुए वहां पे क्योंकि उन्होंने जंग रोक दी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जंगे उहद के तनाजुर में ये आयत आई है कि जब तुम्हें ये खबर मिली कि तुम्हारा रसूल शहीद हो गया है तो तुमने जहाद करना छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो क्या रसूल को कभी मौत नहीं आएगी। तो ये आयत उस बैकग्राउंड में आई है और अब फिर विसाल के मौके पे तिलावत की गई है मुसलमानों के सामने। वमा मुहम्मदुन और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रसूल मगर हमारे भेजे हुए हमारे एक रसूल। क़द खलत तहकीक गुजर चुके हैं मिन कबल हिर रसूल आपसे पहले भी रसूल। अफ इम्माता क्या बस अगर वो फौत हो जाएं औ कुतिला या कत्ल हो जाएं अनकलब तुम फिर जाओगे अला आकाबिकुम अपनी एड़ियों पर। यानी कि अल्लाह का रसूल जब तुम्हें अल्लाह का पैगाम देता है और तुम ईमान ले आते हो तो तुम पर तो सारी जिंदगी के लिए जहाद फर्ज हो जाता है। उस रसूल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तुम्हारे अमल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। वमैयन कलिब और जो फिर जाए अला अकिबई है अपनी एड़ियों पर फलन यदुर अल्लाह बस हरगिज नहीं बिगाड़ता है अल्लाह का शैअन कुछ भी। वसयजिल्ला हो और अनकरीब सा अनकरीब यजी जजा देगा अल्लाह हो अल्लाह ताला अशाकिरीन शुक्र करने वालों को। ये आयत जब विसाल फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो भी मुसलमानों पर एक क़यामत की घड़ी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर सहाबी भी तलवार तान कर खड़े हो गए और थोड़ी देर के लिए आपका ज़हनी तवाज़ुन डिस्टर्ब हो गया और आपने कहा कि जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो सत्ते की हालत में थे। हज़रत उस्मान किसी से बात करने के काबिल नहीं थे और धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को संभाला और ये आयत तिलावत की उनके सामने और ये कहा कि अल्लाह का रसूल और मेरा प्यारा दोस्त रुख्सत हो चुका है लेकिन अल्लाह का पैगाम और उसका कुरान और उसका दीन जो है वो हम सब के पास है और हमने उसके लिए मेहनत करनी है। और इस तरह आपने उम्मत को संभाला था। آیت نمبر 145، وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، کتاب موجلہ، لکھا ہوا ایک مقررہ وقت ہے، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو چاہے گا دنیا کا ثواب، دنیا کا انعام، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اس کو اسی میں سے، وَمَنْ يُرِدْ، اور جو چاہے گا ثواب الْآخِرَتِ، آخرت کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اس کو اسی میں سے، وَسَنَجْزِي، اور انقریب ہم دیں گے، سا انقریب، نہ ہم جزا، جزا دیں گے، شاکرین، شکر گزاروں کو. یہ یہاں پر اب جو ہے کہ کسی یہ جہاد، کیونکہ جہاد اور انفاق میں نے آپ کو بتایا تھا سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں آل عمران کے اس حصے میں، تو یہاں پہ موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو، وہ تو اللہ کا لکھا ہوا ایک وقت ہے، یاد رکھو کہ تم دنیا میں جو چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو اس میں سے دیا جائے گا، تو اپنی پرائیورٹیز دنیا میں ٹھیک رکھو، اپنی ترجیحات دنیا میں ٹھیک رکھو. وکعین، اور بہت سے من نبیین، نبی قاتلا، جو لڑے تھے، معہو، ان کے ساتھ، ربیون، اللہ والے، ربانی لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے تھے، فما وہنو، پس وہ سست نہیں پڑے، وہن کا مطلب ڈھیلا پڑ جانا، فما وہنو، پس وہ سست نہیں پڑے، لما اصوابہم، اس کے ساتھ جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفو، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، ضعیف ہوئے، وما استکانو، اور نہ ہی وہ دب گئے. تو مجاہد کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسلسل جہاد کر کر کے یا تو وہ سست پڑ جائے گا، تھک جائے گا، ضعفو، کمزوری ظاہر ہو جائے گی. تو اس نے وہن سے کیسے بچنا ہے، سست پڑنے سے کیسے بچنا ہے، ورزش کرنی ہے، اپنے آپ کو فزیکلی مضبوط رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. زوف سے کیسے بچنا ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے. صحابہ نے ایک دفعہ پے در پے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ صبح کی نماز میں بہت سے صحابی نہیں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پے در پے روزے رکھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے، اور یہ لوگ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ یہ مجھ جیسے ہو جائیں، یعنی کہ میرے ساتھ مقابلہ نہ کریں، اور اپنے جسم کی توانائی کو یہ برقرار رکھیں، ورنہ یہ اللہ کا کام نہیں کر سکیں گے. تو وہ ضعیف نہیں ہوئے، وہ مستکان ہوں، اور نہ ہی وہ دبے. تو دبتے وہ لوگ نہیں ہیں جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں اثبات ہوتا ہے، جن میں استقامت ہوتی ہے. تو یہ مجاہد کی ساری کوالٹیز یہاں پہ بتا دی گئیں. وہ ایکسرسائز کرتا ہے، سست نہیں پڑتا، وہ اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے دبتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو ہر دلیل قرآن سے ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا کہنا، الا مگر، ان قالو، یہ کہ وہ کہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کفار کی قوم پر. فآتاہم اللہ، پس انہیں دیا اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اچھا ثواب، اچھا انعام. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کا، کفرو، جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبو، پس تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، گھاٹے میں، نقصان میں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. یعنی جب اللہ تمہارا مولا ہے تو تم کسی اور پہ کیوں ڈپینڈ کرتے ہو؟ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، سَا انقریب، نُو ہم، لام قافیہ मुलाकात भी इसी से निकला है, हम डाल देंगे, अनकरीब हम डाल देंगे, फी कुलूब लजीना, उन लोगों के दिलों में, कफरू जिन्होंने कुफर किया, और रोबा एक रोब एक हैबत, बिमा अशरकू उसके साथ कि उन्होंने शिर्क किया, बिल्लाही अल्लाह के साथ। तो अल्लाह के साथ किसी का शरीक ठहराना इंसान को नुकसान पहुंचाता है। वो इंसान जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर किसी से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। याद रखें, जिस इंसान का क़िबला ख़ता हो जाता है, जो किसी भी किस्म के शिर्क में मुब्तला होता है, उसका एतमाद, उसका एतबार, उसका तवक्कुल, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसका अज़म ख़त्म हो जाता है। वो फिर और इंसानों का और बुतों का और कब्रों का और मौसम का, हर चीज़ का मोहताज हो जाता है। हाँ, हम सुबह नहीं उठते हैं ना, हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या आपको ये अंदाज़ा है कि जब हम अपनी नींद को अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? हम उस वक्त अपनी नींद को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझते हैं, हम तकब्बुर कर रहे होते हैं, और हम अपनी नींद को अल्लाह के हुक्म से इम्पॉर्टेंट समझते हैं, हम अपनी नींद को अल्लाह के हुक्म के साथ शरीक कर रहे होते हैं। ये याद रखें, शिर्क को इसीलिए नाकाबिले माफ़ी गुनाह कहा गया है क्योंकि ये इंसान का किरदार तबाह कर देता है। सबसे ज़्यादा शिर्क कौन करता है? झूठ बोलने वाला। और सबसे बुरा झूठा कौन होता है? जो अपने आप से झूठ बोलता है, जो अपने नफ्स से झूठ बोलता है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है, अपनी गलती नहीं मानता। तो अल्लाह हम सबको छोटे से लेके हर किस्म के शिर्क से बचाए। तो अनकरीब हम इनके दिलों में रोब डाल देंगे इनके शिर्क की वजह से, मालम युनज़िल बिही, जिसकी नहीं उतारी हमने सुल्तानन कोई भी सनद, वाहुमुन्नार और उनका ठिकाना जहन्नम है, वबेसमस्वज़्वालिमीन और बहुत बुरा ठिकाना है जालिमों का, वलकद और तहकीक सदकुमुल्लाह, सच्चा कर दिया था अल्लाह ने, वादहु अपना वादा, अल्लाह ने तुम्हारे साथ किया हुआ अपना वादा सच कर दिया था। अल्लाह ने तुमसे ये वादा किया है कि जब तुम अल्लाह के दीन, अल्लाह का और उसके रसूल की अताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया में कामयाब करेगा। तो अल्लाह का वादा तुम सच देख रहे थे। इस तहुस्सूनहुम, जब तुम कत्ल करने लगे उन्हें, बेइज्नी ही अल्लाह के इज़्न से, ये भी जंगे उहद का ही वाक़या है क्योंकि शुरू में मुसलमानों को फतह नसीब हो रही थी, हत्ता इज़ा फशिल्तुम, यहाँ तक के जब तुमने बुजदिली की, व तनाज़ातुम और झगड़ा किया, तनाज़ा किया, फिल अम्रे अपने काम में, व असैतुम और तुमने नाफरमानी की, मिम्बादे बाद इसके, मा अराकुम जब तुम्हें दिखाया, मा तुहिब्बूना जिसे तुम चाहते थे। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त आयत है कि देखो अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया था तुमसे, और तुम उहद में फतायाब होने लगे थे, तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने बुजदिली की और तुमने आपस में झगड़ा किया, वो ऊपर घाटी वाले जो थे वो, और असही तुमने नाफरमानी की, तो ऊपर घाटी वाले नीचे आ गए या आपस में झगड़ने लगे, तुम क्यों नीचे आए, ये वो, और फिर फशिल तुम गुजदिली दिखाना, जब इनको ये पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो इन्होंने हथियार फेंक दिए। और मसला क्या हुआ था, असली मसला क्या था, मिम्बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, बाद इसके कि हमने तुम्हें वो दिखाया जिससे तुम्हें मोहब्बत है, यानी दुनियावी माल जो है वो एक ऐसा फितना है जो इंसान को बुजदिली पर और झगड़े पर और रसूल की और अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करता है। मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से ऐसे थे जो चाहते थे दुनिया, वमिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में ऐसे भी थे जो आखरत चाहते थे, जो उस वक्त उन्होंने लूट मार नहीं की, माल गनीमत के पीछे नहीं दौड़े, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर निकल आए थे, घबरा गए थे, सुम अस्वराफकुम फिर तुम्हें फेर दिया, अनहुम उनसे, लियब्तलियकुम ताकि तुम्हें आजमाया जाए। देखो अगर तुम्हें माल गनीमत मिल रहा है तो ये भी आजमाइश है, और अगर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मिली है तो ये भी आजमाइश है, और अगर तुमने एक हुक्म के खिलाफ वर्जी की है और उसके नतीजे में नुकसान खाया है तो ये भी आजमाइश है। वलकद आफा अनकुम, और तहकीक माफ किया तुम्हें। असहाब उहद जो हैं, जैसे असहाब बदर हैं, असहाब उहद बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी इनकी सहाबा में से, और क्योंकि इनकी माफ़ी का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया है, वलकद आफा अनकुम, और तहकीक माफ़ कर दिया तुम्हें। जैसे कि मस्जिद क़िबलतैन में जितने असहाब और सहाबियात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे फिर के उन्होंने वो किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी थी, और बिल्कुल कोई सवाल नहीं किया था, कोई चूँ चरा नहीं की थी, उनकी तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में की है। इसी तरह असहाब उहद के लिए कहा गया कि अफा अनकुम, तुम सबको माफ़ कर दिया है, वल्लाहु, और अल्लाह ज़ुफ़दले, वो तो फ़ज़ल करने वाला है, अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, इस तुसईदूना, जब तुम चढ़ते थे, चढ़ाई करते थे, वला तलवूना, और नहीं मुड़ कर देखते थे, अला अहदिन, किसी एक को भी, यानी जब वहाँ पर वो हल्ला गुल्ला मच गया जंग का और बुरा हाल हो गया और एक खौफ की हालत हो गई और कुफार ने आगे और पीछे से मुसलमानों पे हमला किया, तो जाहिर है वो मैदान से भाग रहे थे। तो जब तुम चढ़ाइयाँ करते थे, भागते थे और मुड़कर भी नहीं देखते थे, अला अहदिन, किसी एक को भी, व रसूलू, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदउकुम, वो तुम्हें बुलाते थे, फ़ी उखराकुम, तुम्हारे पीछे से, तो तुम्हें रसूल की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी और तुम उस गहमा गहमी में और उस बुरे हाल में तुम लोगों ने अपने हवास को सलामत नहीं रखा। फ़ास्वाबकुम, पस तुम्हें पहुँचा, गम मन बेगम मिन, एक गम के बदले में दूसरा गम, यानी एक तो तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर आई और बड़ा गम ये कि और मज़ीद लोग तुम में शहीद हुए, 70 शुहादा, लिकैला, ताकि नहीं तहज़नू, तुम गम करो, अलामा फ़अतकुम, उस पर जो तुमसे निकल गया, वलामा अस्वाबकुम, और ना वो जो तुम्हें पेश आए। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है, जब तुमने रसूल की नाफरमानी की और उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसकी बात नहीं सुनी, तो तुम्हें बहुत गम पहुँचा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह जानता, अच्छी तरह जानता है जो तुम करते हो। सुम्मा अनजल अलैकुम, फिर उसने नाजिल किया तुम पर, मिम्बादिल गम, में गम के बाद, ये सेशन लंबा हो गया लेकिन ये उहद का ही किस्सा चल रहा है तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। सुम्मा अनजल अलैकुम, फिर उसने उतारा तुम पर, मिम्बादिल गम, में गम के बाद, अमनतन, एक अमन, नुआसन, एक ऊंघ, युख्शा, जिसने ढांप लिया, त्वा इफतम मिनकुम, एक ग्रोह को तुम में से, व त्वा इफतुन, और एक ग्रोह, कद अहम्मत हम, उन्हें तो फिक्र पड़ी हुई थी, अनफुसुहुम, अपनी जानों की, यजुन्नूना, वो गुमान करते थे, बिल्लाहे, अल्लाह के बारे में, गैर अलहक, ना हक, ज़न अल जाहिलिया, जाहिलियत के गुमान करते थे। तो एक वो ग्रोह था जिस पर अल्लाह ने एक सकीना नाजिल किया, एक नींद नाजिल की, और वो सो गए वहाँ पे। और उहद की रिवायात में ये मौजूद है कि जब वो सारा हंगामा गुजर गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा सलामत आ गए और कुफार वहाँ से भाग गए, तो सहाबा वहाँ पे थक के सो गए। ये वो नींद है, ये वो सुकून, सकीना है जो अल्लाह अपने बंदों पर नाजिल करता है। अगर आप किसी बड़े गम के मौके पर देखें, जब मैयत उठा ली जाती है, तो उसके जो बहुत करीबी होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं, वो अक्सर वहीं पर या सो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये बेहोश हो गए हैं, इन्हें चक्कर आ गया है, लेकिन वो वहाँ सो जाते हैं थक के। ये वो ऊँग है, ये वो सकीना है जो गमगीन लोगों पर अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। तो ये एक तो वो ग्रोह था जो वहाँ सो गया, और दूसरा वो ग्रोह था जिन्होंने अल्लाह पर जाहिलियत के गुमान करने शुरू कर दिए। जाहिलियत के गुमान क्या थे? यकूलूना, वो कहते थे, हल्लना मिनल अम्र, क्या हमारे लिए भी कोई काम है, मिन शय इन, कुछ भी, कुल, यानी कि क्या इसमें हमारा कोई काम है, हमारी कोई मर्जी चलती है? जब अल्लाह के अमर में कोई ऐसे कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अल्लाह जवाब देता है, कुल, फरमा दीजिए, इन्नल अम्रा, बेशक सारा काम, कुल्लुहू लिल्लाह, सारे के सारा अल्लाह के लिए है। युखफून फी अनफुसहिम, वो छुपाते हैं अपने दिलों में, माला युबदून लका, जो वो जाहिर नहीं करते आप पर। यकूलूना, वो कहते हैं, लौकान लना, अगर हमारे लिए होता, मिनल अम्र शैउन, कुछ भी इख्तियार इस काम में, मा कुतिलना हाहुना, इस तरह हम ना मारे जाते। कुल, फरमा दीजिए, लौकुन तुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम होते अपने घरों में, लबरज़ल लज़ीना, अलबत्ता ज़रूर निकल पड़ते वो लोग, कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, جن پر مارا جانا لکھا ہوا تھا، الی مدواجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے اس نے اس جگہ کی طرف نکل کے بھاگنا ہے جہاں اسے قتل ہونا ہے. ولیبتلی اللہ، اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ولیمحص، اور تاکہ وہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید. ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا منکم، پیٹ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دو جماعتیں ٹکرائیں آپس میں، انما استزلهم، اس کے سوا نہیں ہے، استزلهم، پھسلا دیا ان کو، الشیطان، شیطان نے، ببعد، بعض کی وجہ سے، ما کسبو، جو انہوں نے کمایا. تو شیطان، یعنی وہ کمزور تھے، ان کے نفس کمزور تھے، اور شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ جنگ میں نہیں شامل ہوئے. ولقد عفا الله عنهم، اور تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو بھی، جو لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت حلم والا ہے، بہت نرم ہے.